اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ سبق میں ہم نے پڑھا تھا فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، بس تم یاد کرو مجھے تو میں یاد کروں گا تمہیں، اور میرا شکر ادا کرو، میرا احسان مانو اور میری ناشکری نہ کرو. بہت پیاری آیت ہے. اس آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد کیا کرو، جب تم مجھے یاد کرو گے نا تو میں تمہیں یاد کروں گا. اب آپ دیکھیں، انسان کا اللہ کو یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں، انسان کو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہی چاہیے، کیونکہ اس کی تو ایک ایک سانس جو چل رہی ہے، ایک ایک رواں اس کا احسان مند ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہے، ایک ایک رواں، تو اس کو تو کرنا ہی چاہیے. بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے، وہ رب جس کا ذکر، جس کی تسبیح ساری کائنات کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. جو جس کی تسبیح ساری کائنات کرتی ہو، سوچیں وہ اس بندے کو یاد کرے، کیا انسان کی اتنی اوقات ہو سکتی ہے؟ اتنی ہستی ہے کیا ہم میں اور کیا ہماری ہستی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے؟ سبحان اللہ، جس کو سارے یاد کرتے ہیں وہ مجھے یاد کرے. آپ دیکھیں، کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے نا، مثلاً کوئی یہاں کا گورنر ہے یا کوئی بڑا اسکالر ہی ہے مثلاً، اب آپ اس سے ملتے ہیں تو آپ اس کے بعد اتنا ان کو یاد کرتے ہیں کہ دیکھیں، اور لوگوں کو اتنا بتاتے ہیں، میں تو فلاں سے ملی تھی، میں فلاں سے ملی تھی، میں ایسے گئی، یہ ہوا، وہ کتنی دفعہ ذکر کرتے ہیں، لیکن کیا وہ آپ کا کبھی ذکر کرے گا؟ اس کو تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کس سے ہاتھ ملایا اور کون مجھ سے ملا. اس کو تو ہزاروں لوگ ملتے ہیں روز، اس کے پاس اتنے کام ہیں، اس کو کوئی یہی کام ہے کہ وہ ہمیں یاد کرتا پھر نا، تو کہاں یاد رہتا ہے، نام تک نہیں یاد رہتا. لیکن ہم کتنے فخر سے بتاتے رہتے ہیں ہم اس سے ملے اور ہم نے ایسے بات کی، پھر اس نے یہ کہا، ایسا ہوتا ہے نا. تو جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، وہ آپ کو کبھی یاد نہیں کرتے، کبھی بیٹھ کے نہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں فلاں مجھے وہاں میں ملی، لیکن آپ بار بار زندگی میں یاد کرتے ہیں. اور یہاں کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ سے بھلا زیادہ بڑا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بھلا بڑا امپورٹنٹ اور کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے. سبحان اللہ، انسانوں میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، کہ وہ یاد کرے بندے کو تو بہت بڑی بات ہے. اسی لیے فرمایا تو شکر ادا کیا کرو، اس بات پہ بھی میرا احسان مانو. دیکھو، میری ناشکری نہ کرو، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو بندے سے ناشکری نہیں پسند. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تیرا شکر کس طرح ادا کروں، فرمایا مجھے یاد رکھو، مجھے بھولو نہیں، یہی میرا شکر ادا کرنا ہے، اور بھول جانا یہ میری ناشکری ہے. تو اللہ کو بھولنا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اور کیا فرمایا، دیکھیں یہ ساری باتیں، بلکہ پورا پارا ایک بات سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ کون سی بات ہے جو ہم نے اس پارے کے شروع میں پڑھی تھی. آپ نے اس بات کو ذہن سے نکلنے نہیں دینا، کیونکہ تبھی اسی کی بیس پہ پورا پارا یہ چل رہا ہے. اور وہ کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط بنا دیا، تمہیں امت وسط بنایا. اس بارے میں جتنی باتیں آئیں گی نا، وہ امت وسط کی کو، یعنی ان کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں، سمجھ لیں ایک انسٹرکشن مینوئل ہے جو یہ آپ کو سارا اس بارے میں ملے گا. امت وسط کو ایک فرد کی حیثیت سے تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، وہ بھی ایک انسٹرکشن ہے، لیکن ایکچولی یہ امت وسط، دیکھیں پہلے ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا نا، پچھلے پورے پارے میں ہم یہی پڑھتے رہتے ہیں. پھر اینڈ میں تحویل قبلہ کی بات آئی تھی، اور تحویل قبلہ کیا ہے، انوگریشن ہے اس امت کی، سمجھ لیں کہ اس امت کو یہ جو اتنا بڑا ٹائٹل امت وسط کا ملنے والا ہے اس کے لیے ایک نشانی ہے کہ یہ لو تمہارا قبلہ اب چینج ہو گیا، اب ناؤ یو آر اے نیو امت. اس سے پہلے مسلمان ٹھیک ہے بھائی چارہ تھا، یہ تھا ایک گروپ تھا، لیکن امت کب بنی؟ وہ جب ان کا قبلہ چینج ہوا. قبلہ چینج ہو گیا، اب ایک تم امت ہو، اب تمہارا یہ کام ہے. اس کام کے لیے تمہیں کیا کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں پہلے سے ہمیں انسٹرکشنز ملنی شروع ہو گئی نا، فاستبقوا الخیرات، پھر فلا تخشوا واخشوني، پھر کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پھر اب کیا انسٹرکشن ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب بھی یہ بات قرآن میں آئے یا ایھا الذین آمنوا، تو اسی وقت ہم سب کو الرٹ ہو جانا. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آگے اللہ تعالیٰ کوئی حکم دینے والے ہیں، کوئی حکم آ رہا ہے ہمارے لیے جو ہم نے پورا کرنا ہے. تو اب سمجھ لیں شاہی فرمان آنے والا ہے، ٹھیک ہے، شاہی فرمان. وہ جو شہنشاہ ہے وہ کوئی حکم دینے والا ہے. تو ایک دم دل کو تیار کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کمانڈ کرنے والے ہیں، اب میں نے اس کو پورا کرنا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. صبر اور نماز کیا ہیں؟ یہ ہیں دو چیزیں جو تمہیں ہیلپ کریں گی اس کام کو کرنے میں، جو ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی جا رہی ہے ایز امت وسط، اس کے لیے تمہارے پاس دو ویپنز ہیں، دو ہتھیار ہیں، ایک کا نام صبر اور ایک کا نام نماز ہے. دیکھیں عام زندگی کے لیے بھی ہے، لیکن ہم یہ اکثر جب تفسیر ہوتی ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ امت وسط کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، اور اس تناظر میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس اینگل سے بھی ان آیات کو دیکھیں. سب سے پہلے اسی اینگل سے دیکھتے ہیں، دیکھیں کیوں صبر کی بات کیوں کی گئی. سب سے پہلے یہ دیکھیں، جس وقت، ایک تو پہلے صبر کا معنی دیکھ لیں نا، صبر کا ہی نہ معنی بتا ہوا تو پھر ہم آگے صبر کرنا تو کیا ہے. صبر کیا ہے جس کے ساتھ ہم نے مدد لینی ہے؟ صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ خود کو روکے رکھنا. کس چیز میں روکے رکھنا؟ جب بھی کچھ ناخوشگوار حالات ہوں تو ان کو برداشت کرنا، خود کو کنٹرول کرنا، لیکن آسان انداز سے، حق کے راستے پہ جم جانا، یہ صبر ہے. جب انسیوٹیبل حالات ہیں، ناموافق حالات ہیں، ان میں دین سے نہیں ہٹنا. جب دوسری جگہ کہیں اور فائدہ نظر آ رہا ہے، کہیں ایسی جگہ آپ کو لگ رہا ہے، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پہ فائدہ ہے، لیکن اس فائدے کو بھی چھوڑ کے اللہ تعالی کے دین سے بندھے رہنا، یہ صبر ہے. یہ سب صبر ہے، برداشت. صبر تین طرح کا سمجھ لیں ہو سکتا ہے، یا تین اس کے درجات ہو سکتے ہیں. نمبر ون یہ کہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے. حرام کام ہے نا، اس سے خود کو روکے رکھنا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج کوئی مطلب کسی جگہ جانا ہے تو میں بہت بان سنور کے اور نکلوں اور خود کو کتو کی خوبصورتی دکھاؤں لوگوں کو اور یہ کروں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا، قرآن میں منع کیا اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہیں کرنا. تو اب میں جو اپنے آپ کو روکوں گی وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے. نمبر ٹو، اللہ کی اطاعت میں پابندی کرنا، یہ صبر ہے. اب دیکھیں اب رات کو اتنی لیٹ سوئے ہیں، کس کا دل چاہ رہا ہے فجر پہ اٹھنے کا، ارے بہت نیند آ رہی ہے، ایسا کرتی ہوں کہ قضا کر کے پڑھ لیتی ہوں. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اس وقت اٹھنا. اس میں صبر چاہیے اٹھنے کے لیے، یہ بھی صبر ہوگا. جب آپ اللہ کا حکم ماننے کے لیے اپنے آپ کے اوپر جبر کرتے ہیں نا، جبر ہوتا ہے، واقعی انسان کو کرنا پڑتا ہے. آپ کا دل کچھ کہہ رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، تو اب آپ کر رہی ہیں وہ، تو اس کے لیے صبر چاہیے. تو یہ نمبر ٹو صبر یہ ہے. نمبر تھری کیا ہے؟ مصیبتوں اور آفتوں کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے. دیکھیے مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، गुजर तो वो जाती हैं इंसान के ऊपर से, मरता नहीं है कोई भी, लेकिन उनको बर्दाश्त कैसे करना कि खुद को उस वक्त कंट्रोल कर लेना, कोई ऐसी बात ना निकालना मुंह से, ना कोई ऐसा काम करना जो अल्लाह की नाफरमानी को। अच्छा, सब्र के बारे में ना पढ़ना बड़ा आसान है, मगर इस पे जम जाना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब्र जिंदगी के एक एक स्टेप पे सब्र है, यकीन करें एक एक स्टेप पे। यानी कोई ऐसा जिंदगी का काम नहीं है जिसमें सब्र की जरूरत ना हो। अब आप यहां पे पढ़ाई के लिए बैठे हैं, इसमें भी क्या चाहिए, सब्र आपके अंदर अगर नहीं होगा तो आप कहेंगे हाय 3 घंटे कैसे बैठूं, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो नहीं हमसे बैठा जाता। इस बैठने के लिए भी सब्र चाहिए, पढ़ने के लिए भी सब्र चाहिए, उकता जाएं, छोड़ दें, मुस्तकिल इससे जुड़े रहने के लिए भी सब्र चाहिए कि आप जब तक कोर्स पूरा ना हो उस वक्त तक इससे जुड़े रहें, इसके लिए भी तो सब्र ही चाहिए ना। अच्छा, ना मुआफिक हालात में मैंने आपको कहा है कि तब भी ना दीन से हटना, तो ना मुआफिक हालात, अनसुटेबल हालात, जिनमें मिसलन आपका दिल नहीं चाह रहा, आपका दिल नहीं चाह रहा, या फिर ऐसा कोई हालात हो गए हैं कि जो आप घर में मसलन मेहमान आ गए, या कोई बीमार हो गया, या घर में कोई और प्रॉब्लम आ गई है, कोई फैमिली में आ गई है प्रॉब्लम, तो या मिसाल के तौर पे लोग मूव होने लगते हैं, वेकेशन पे चले जाते हैं, कोई प्रेग्नेंट हो जाता है, फिर आप क्या, क्लास कंटिन्यू रखने के लिए भी सब्र चाहिए होता है। उसके बाद लोग आते हैं, सबसे पहले जो चीज छूटती है वो है कुरान की तालीम। जरा से हालात नामुवाफिक होते हैं ना, कि हमारी तबीयत खराब हो गई, या हम कोई ऐसा कोई मसला मसाइल हमारे साथ हो गए, घर में कोई ऐसी परेशानी आ गई, सबसे पहले हम कहते हैं अल्लाह का कलाम छोड़ो। ऐसे लगता है जैसे कि हर मसले का हल इसमें है, इसको छोड़ने में। वाकई अगर मसला आपका हल हो जाता है इसको छोड़ने से तो जरूर छोड़ दें, लेकिन अगर नहीं होता तो ये तो वो कलाम है जो आपकी हर तरह की मुश्किल सिचुएशन में आपको थाम के रखता है, जो आपको सुकून देता है, इसी से तो आपको तसल्ली मिलनी है, अल्लाह ताला से कुर्ब मिलना है। फिर हम सोचते हैं इसको छोड़ के हमारी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, मेरी तबीयत जो खराब हुई हुई वो ठीक हो जाएगी, ये शैतानी ख्याल तो हो सकता है, अल्लाह की तरफ से नहीं होगा। तो आप देखें सब्र जिंदगी के हर शोबे में। फिर देखें बाज दफा ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं जिनके साथ हमारी तबीयत नहीं मिलती, जिनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिनसे हमें तकलीफ दे बातें सुननी पड़ती हैं, तो उस वक्त भी क्या चाहिए, सब्र। सब्र का मतलब यह है कि हम खुद को मुतासिर ना होने दें कि छोटी छोटी सिचुएशन में हम बस बैठे हुए हैं कि हाय हम गम मनाते जा रहे हैं, और बस अब हम उसी सिचुएशन को लेके बैठे हुए हैं, अब ना हमने उठना है, ना कोई काम करना है, ना कोई पॉजिटिव तरीके से चलना है जिंदगी में, बस अब क्या करना है, बस तो सब खत्म हो गया। ना वाफे हालात में भी खुद को कंट्रोल करके रखना, मुतासिर नहीं होने देना, हाय वाय वावेला नहीं शुरू कर देना। तो और अच्छे वक्त के आने का इंतजार करना भी सब्र है। जब अभी हालात सही नहीं है लेकिन कोई दिन आएगा जब हालात सही हो जाएंगे, इसका इंतजार करना भी तो सब्र है ना। देखिए मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सब्र नहीं कर सके थे, तो देखिए उनका दीन का फिर क्या हाल हुआ। तो जो खुद को बांध के रखता है ना वो ही सब्र वाला है, कि जो हुक्म मुझे दे दिया या जो जिम्मेदारी मैंने ले ली या मुझ पर डाल दी गई, मैंने इसे हटना नहीं है, चाहे मुझे कहीं और फायदा नजर आ भी रहा है बजाहिर, लेकिन मैंने अल्लाह के दीन से नहीं हटना। तो हमें छोटी छोटी सिचुएशंस में भी खुद को चेक करना है कि क्या मैं सब्र करती हूं, फिर हमें प्रैक्टिस करनी है। देखिए पहले छोटी सिचुएशन से हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना तो फिर ही हम बड़ी बड़ी सिचुएशंस में भी सब्र कर सकते हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों में ही बेसब्रे हो जाते हैं, अगर घर में थोड़ी सी भी बात हो, बच्चे शोर ही कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बेसब्रे हो रहे हैं और पागल हो रहे हैं और चीख रहे हैं और चिल्ला, तो हम बताएं कि किसी बड़ी सिचुएशन पे कैसे सब्र कर सकते हैं। तो हम सब के लिए ये एक लेसन है सबर, क्योंकि यहाँ पे इस आयत में ही फरमाया इन्नल्लाह मा साबिरीन, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, सबर करने वालों के साथ ही अल्लाह है। सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि सबर के ये माने हैं कि इंसान अल्लाह की नेमतों का इकरार करे, मुसीबतों का बदला अल्लाह की तरफ से मिलने का यकीन रखे, अल्लाह से सवाब मांगे, इसके ऊपर हर घबराहट और परेशानी और कठिन मौके पर जमा रहे और नेकी की उम्मीद पर खुश नजर आए। यानी सबसे पहली बात क्या है कि नेमतों का इकरार करे। यानी आपके पास जो नेमतें हैं ना, ये नहीं सोचें हाय फलानी चीज मुझसे चली गई, ये सोचिए कितनी सारी चीजें अल्लाह ने दी भी तो हुई हैं। हालांकि मुसीबत के वक्त में ये सोचना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जिस जो परेशानी इंसान पे आई होती ना, लगता है हर चीज पे वो हावी हो गई है, आपको फिर कोई अच्छी चीज नजर ही नहीं आती, बस लगता है कि ये मुश्किल ही है जो सारी, बस या ये जो चीज मुझसे चली गई है बस यही सब कुछ थी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कोई नेमत मुझे मिली ही नहीं हुई। नहीं, सबर यही है कि जो नेमतें हैं ना उनका इकरार करें। इकरार ये नहीं है कि सोचें उनको, सोचना अलग बात है, लेकिन इकरार करें जुबान से, यानी माने जुबान से बोलें कि अच्छे दिन भी तो थे ना, एक दिन अच्छे हालात भी तो थे ना, अगर आज मेरे हालात ऐसे हुए हैं, मुसीबत के दिन मुझ पे आए हैं, तो इससे पहले कई दिन अच्छे भी तो मैंने इंजॉय किए थे। बल्कि दूसरे अगर आपसे अफसोस का इजहार करें, उनको भी कहें कि नहीं, अल्लाह की मुझ पे बहुत रहमतें हैं, बड़ा करम है उस जात का। और सोचें जब इंसान अपनी जुबान से ये कहता है तो सब्र करना कितना इजी हो जाता है ना। फिर ये देखें दूसरी बात क्या फरमाई उन्होंने कि मुसीबतों का बदला अल्लाह के हाँ मिलने का यकीन रखे। यानी आपके एक तो इन्फॉर्मेशन तो हम सबको है कि हाँ मुसीबत आई है तो इसका अल्लाह ताला अजर देंगे, उससे ये होगा, लेकिन यकीन हो, ये बात इंसान को भूल जाती है ना कि इसका बदला अल्लाह ताला मुझे देगा, अल्लाह मुझे इसका अजर जरूर देगा, तो अल्लाह ताला से सवाब मांगे भी। देखें अगली बात क्या है, अल्लाह से सवाब मांगे कि या अल्लाह ताला ये जो मैं सबर कर रही हूं ना, आप मुझे इसका अजर देना, ये मैं आपके लिए सबर कर रही हूं। और फिर देखिए अगली बात क्या है, घबराहट और परेशानी और घुटन के मौके पर इस्तकलाल जमा रहे और फिर नेकी की उम्मीद पे वो खुश नजर आए। नहीं, अल्लाह तूने नेकी की तौफीक मुझे दे दी है, तेरा शुक्र है इस पे कि मैं सबर कर पाई हूं, अल्लाह तूने मुझसे ये नेकी करवा ली है, शुक्र है तूने मुझे ये मौका दिया नेकी का। अगर देखें अल्लाह ताला ये मौका ना देता तो अजर भी ना पाते। मसलन जिसको कभी भूख लगी नहीं, फाका आया ही नहीं, उसको फाके पे सबर का अजर कहां से मिलेगा? जो कभी बीमारी नहीं हुआ उसको बीमारी पे सबर का अजर कैसे मिलेगा? अल्लाह ताला तूने मुझे मौका दे दिया। तो इसलिए ये सब चीजें, ये तो एक अमूमी में आपको सारी बातें बता रही हूं ना, लेकिन अच्छा हाँ एक बात और, ये जो लोगों की बातों को बर्दाश्त करना है ना, पी जाना, ये भी सबर है। आपके कुलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके घर वालों में से कोई जिनके साथ आपकी तबीयत नहीं मिलती, ससुराल वाले हैं, शौहर हैं, हमसाए हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके कोई बात, कोई ऐसी चीज आपको चुपती भी कह दी, हमारा तो फौरन पारा चढ़ जाता ना, उस वक्त भी सबर की जरूरत है। बाज लोग ये कहने लगते हैं अब तो हमने किसी से मिलना ही नहीं, क्या फायदा मिलने का, मिलते हैं तो कोई ना कोई बात चुपती भी सुना देता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन लोगों से मिलता है और उनकी ईजाओं पे सबर करता है, उसको उस मोमिन की निस्बत ज्यादा सवाब मिलता है जो लोगों से ना मिलता है ना उनकी तकलीफों पे सबर करता है। तो अल्लाह ताला को तो आपका मिलजुल के रहना पसंद है। हम इसलिए नहीं किससे मिलना चाहते कि हमें बातें सहनी पड़ेंगी, बातें सहनी पड़ेंगी, फिर हम हर्ट होंगे, फिर ये होगा। हालांकि अगर आपको बात सुननी भी पड़ी तो اس پہ جو آپ نے صبر کیا اس کے اوپر آپ کو اجر ملا, اور آپ اللہ کے ہاں بہتر ہیں اس سے جو ملتا ہی نہیں لوگوں سے. عام طور پہ آج کل یہ رواج ہو گیا, لوگ کٹ آف ہو کے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس یہی ٹھیک ہے, اسی میں عافیت ہے, نہ کسی کی سنیں گے اور نہ کچھ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ صبر ہر جگہ, زندگی کے ہر شعبے میں صبر ہے. چاہے آپ بیماری دیکھ لیں, چاہے کسی کی کڑوی کسیلی باتیں دیکھ لیں, چاہے کوئی ناموافق حالات دیکھ لیں, چاہے کوئی دکھ کی بات دیکھ لیں, چاہے پڑھائی کرنا دیکھ لیں, چاہے کچھ بھی زندگی کا معاملہ, ہر معاملے میں صبر چاہیے. لیکن جب ہم جلد باز ہو جاتے ہیں, جب ہم اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں, جب ہم فوراً ایک ریئیکشنری ہو جاتے ہیں, تو یہ تو بے صبری ہے, صبر نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کا نمونہ ہے, پوری لائف. ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے, اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور ہم بھی اس کے معنی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ سیرت پڑھیں نا اور صبر کو آپ نے سمجھ لیا, تو آپ کو ہر ہر واقعے میں لگے گا کہ یہ تو صبر ہے, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. یہاں میں اس جگہ پہ ہوتی تو میں کیا کرتی. بعض دفعہ ہمارے پر کوئی ایکسٹرا کام آ جائے تو اس پہ بھی کیا ہوتا, ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ جما نہیں سکتے, ہم فوراً آپے سے باہر ہو جاتے, ہماری فوراً روٹین متاثر ہونے لگتی ہے, ہم فوراً اپنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کام ہیں ان کو چھوڑنے لگتے ہیں. حالانکہ کول رہ کے حالات کو ڈیل کرنا, پرسکون رہنا, یہ صبر ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں ویسے تو عمومی طور پہ تو ہر جگہ ہی صبر کرنا ہے, مگر خاص طور پہ یہاں پہ کیوں صبر کہا گیا؟ اس لیے کہ جو کام اب تمہارے ذمے ڈالا گیا نا, اس کے اوپر دیکھیں یہاں پہ کہا نا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, تم مدد مانگو. کس چیز کے لیے مدد مانگے؟ کسی چیز کے لیے مدد چاہیے نا, کوئی کام کرنے کے لیے انسان کو مدد چاہیے ہوتی ہے, ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. میں کہتی ہوں بھئی یہ میرے سے سامان اٹھایا نہیں جا رہا, آپ اس پہ آ کے میری مدد کریں. تو کون سا کام ہے جس کے اوپر مدد مانگی جا رہی ہے, جس کے لیے یہ ٹولز دوب دیے گئے ہیں, ان کے ذریعے ان سے تم کام لیتے ہوئے یہ تمہاری ہیلپ کریں گے, یہ دو ٹولز اس کام کے لیے. سوچیں آپ, میں نے آپ کو جیسے بتایا امت وسط کا کام کیا ہے, اللہ کا پیغام پہنچانا. جب تم اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارے لیے کوئی پھولوں کی سیج بچھا دی جائے گی, لوگ ہار پہنائیں گے اور کہیں گے واہ بھائی واہ آپ نے تو یہ کام شروع کیا. نہیں, یہ بہت مشکل کام ہے, اس راستے میں بڑی مشکلات آئیں گی. آپ یہ کام غیر مسلموں میں کریں تو بہت ہی مشکل ہے, اپنے مسلمانوں میں کریں تو تب بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑتی ہیں. اس بندے کی جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے نا, اس کی عزت سمجھ لیں فری فار آل ہو جاتی ہے. جو وہ چاہتا ہے اس کے اوپر باتیں بناتا ہے, اس کی ذات کو نشانہ بناتا ہے, اس کے خاندان کو کرٹیسائز کرتا ہے, اس کی چھوٹی سی غلطی کو بھی لے کے اتنا اچھالا جاتا ہے کہ اس کو تو پرفیکشن کے معیار سے نیچے نہیں آنا چاہیے تھا نا, یہ اس سے غلطی کیسے ہو گئی, دیکھا ہم نے فلاں جگہ پہ دیکھا اسے فلاں نے ایسے کیا. پھر بعض دفعہ دین کا کام کرنے والے لوگوں سے اتنا ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہی رکاوٹ بننے لگتے ہیں. تو آزمائشیں ہیں اس کام میں, اس کام میں مشکلات ہیں, اس کام میں کئی ایسی چیزیں کہ انسان کہتا ہے کہ چھوڑو کیا ضرورت ہے, ہم چپ کر کے گھر بیٹھے. خاص طور پہ ایسے لوگ جو بہت پرائیویٹ لائف گزارنے کے عادی ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی زندگی پبلک ہو جاتی ہے نا. پھر تو ایسے وقت میں باتوں کو برداشت کرنا, پی جانا, لوگوں کے تانوں کو, لوگوں کی کئی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو جھوٹی باتیں منسوب کر دیتے ہیں, جھوٹی باتیں لگا دیتے ہیں کسی کے اوپر, तो ऐसे में एक काम तो ये हो सकता है हमसे नहीं होता भाई, ये काम हम जा रहे हैं हमारी बला से कोई करते रहे भाई, हम तो बाज आए भाई ऐसी नेकी से, हमसे नहीं ये बातें सुनी जाती लोगों की, जो उठता है इस तरह करता है, भला तुम्हारा मेरे पर एहसान है कोई? ये तो मैं तुम्हें एक अच्छी बात बता रही हूं और तुम लोग सर पे चढ़ रहे हो, इस तरह भी हो सकता है? ठीक है अपने घर बैठो, मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसी नेकी करने का। ये एक चॉइस हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है कि इंसान चलता रहे फिर भी इस रास्ते पे, कितनी ही तकलीफें आए बर्दाश्त करें उनको, यही सबर है, ये टूल, ये सबर का टूल साथ आपके होगा ना तो आप चलते रहेंगे। और ये टूल आपने साथ ना लिया तो पहले दिन किसी ने आपको कोई दो चार बातें सुना दी तो आप तो रोने बैठ जाएंगी कि देखे उन्होंने ऐसे कहा, ये तो आते ही नहीं है, ये तो सुनते ही नहीं है, इतनी दफा कहा है, पता नहीं क्या बात है कि ये आप तो मैंने करना ही नहीं ये काम, क्या फायदा जब कोई सुनता ही नहीं, फायदा क्या? और इन्होंने माननी तो है नहीं, तो छोड़ो इस काम को, दिस हार्ट होके बैठ जाए। ये जो हार्ट ब्रोकन होना होता है ना, दिल बर्दाश्ता होके और इस तरह होके बैठ जाना, ये आपकी हिम्मत तोड़ देता है। तो दिल बर्दाश्ता नहीं होना, इस रास्ते पे चलते रहना, हिम्मत नहीं हारनी है। और इसके लिए फिर अगेन सबर ही चाहिए ना, सबर होगा तो फिर आप चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, चाहे आपको कोई हार पहनाए तो चाहे आपको कोई तीर मारे, मैंने नहीं रुकना। क्या बात होगी, मुझे कुछ कह ही देगा ना, चार बातें सुना देगा ना, आपके पास अगर सबर होगा तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, और सबर ना हुआ तो आप रोने बैठ जाएंगे, डिप्रेशन में चली जाएंगी, 4 दिन आपका डिप्रेशन ही नहीं उतरेगा, भाई मुझे तो रह रह के ये याद आता है फलाने ने मुझे ये बात कह दी थी। तो ऐसे जो लोग होते ना, फिर नहीं वो ये काम कर सकते। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बातें सुननी पड़े, देखें पिछले अंबिया को क्या क्या सुनना पड़ा और क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा, नूह अलैहि सलाम को देखें, और हम थोड़ी सी बात दूसरे ने कह दी हमसे मूड ऑफ करके ही बात कर ली, या हमें थोड़ा डांट दिया, या हमें कुछ कह दिया, तो हम वहीं पे बस ऐसे हो जाए, दिल बुझ जाए, फिर अल्लाह के काम के तो नहीं है फिर, आप फिर ये काम नहीं कर सकते। और फिर इसके लिए भी सब्र चाहिए कि जब वो आपके साथ बुरा रवैया कर रहे हैं तो उसके मुकाबले में ये ना हो कि आप भी तू तू मैं पे उतर आए कि अच्छा तुम मुझे एक सुनाती हो, मैं तुम्हें ये सुनाती हूँ चार, तुम क्या अपने आप को समझती हो? नहीं, उस वक्त भी खुद को कंट्रोल करना और फिर भी मुंह पे स्माइल रखना, उम्दा रवैया रखना, किसी से लड़ाई झगड़े में ना उलझना, ये सबर है, यही है सबर। और वाकई मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को जो कि सुभान अल्लाह जब ये काम करते हैं तो लोग उनको कितना कुछ कह रहे थे, वो स्माइल ही करते रहते हैं, कितना सब्र होता है ना उनके अंदर। तो जो बस इतने नाजुक नगीने हैं कि वो तो बस शीशे के उनके दिल हैं, तो वो नहीं ये बर्दाश्त कर सकते, फिर वो इस रास्ते के मुसाफिर नहीं हो सकते। तो ये रास्ता अंबिया का रास्ता है, और ये रास्ता एक बात याद रख लें, ये रास्ता ऑप्शनल नहीं है। इज इट एन ऑप्शन? पहले तो इस बात को, अगर आपको ये अभी तक लग रहा है कि इट्स ऑप्शनल, तो फिर आप पिछला लेक्चर दोबारा सुने। आपकी जिम्मेदारी क्या है उम्मत वसत के तौर पे, आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है, ये आपको अब अच्छी तरह वाजे होना चाहिए। आप उस तरह से नहीं हैं जैसे कि बाकी लोग हैं, आप उम्मत वसत हैं। अब आप बैठ के नाते पढ़ पढ़ के और अपनी वो कर करके हम उम्मत मोहम्मद के फर्द हैं और हम फलां हैं, और वो अब बनी इसराइल की तरह आप झूम झूम के अपनी वो बड़ी बड़ाइयां करके कि हम बहुत बड़ी उम्मत हैं, चोजन वंस हैं, इससे नहीं फायदा जब तक आप वो काम ना करें जिसके लिए आपको चूज किया गया। और बड़ाइयां तो बनी इसराइल भी बहुत करते थे, तो बड़ाइयों से उनको क्या मिल गया? पिछले पारे में पढ़ लिया ना आपने सारा, वो बड़ाइयां तो वो भी बहुत करते थे, फिर क्या हुआ? क्या उन बड़ाइयों की वजह से वो कामयाब होगा? तो ये याद रखें, सिचुएशंस को हैंडल करना है कूलली, कूल होके, सर पे सवार नहीं करना, लेट गो कर देना, ठीक है? और नंबर टू क्या करना है? सलाह। सलाह क्या है? सलाह हो नमाज, तो वो तो पता है अल्लाह ताला के साथ ये एक कनेक्शन है। ये क्या है? अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन आपका जुड़ जाता है, और इस रास्ते में आपको बहुत ज्यादा ये जरूरत पड़ेगी कि आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन हो और आपकी बैटरी वहां से चार्ज होती रहे। 5 दफा तो बैटरी चार्ज करने की हमें अपनी जरूरत है ही है, कोई इससे ज्यादा दफा करना चाहता है तो और कर ले। तो ये अल्लाह ताला से मुलाकात है। अल्लाह ताला ने आपको 5 तो अपॉइंटमेंट के टाइम्स दिए ही दिए हैं, उसके अलावा भी अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। और लोगों के पास तो देखें अपॉइंटमेंट लें तो फिर क्या होता है, कब कब की अपॉइंटमेंट मिलती है पता है ना आपको। अल्लाह ताला ने आपको खुद ही 5 दफा तो अपॉइंटमेंट दे दी है सारे जहानों के मालिक ने। तो इससे इंसान को सुकून मिलता है, इससे इंसान का मिजाज सही रहता है, इससे बरकत आती है। इसलिए सलात भी जरूरी है। सही मुस्लिम में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह के जिम्मे है, यानी फिर अल्लाह ताला उसके सारे मामलात की हिफाजत करेगा। तो फिर कितना अच्छी बात है ना कि जिसने नमाज पढ़ ली बस समझ लें आपके सारे मामलात आपके अल्लाह के सुपुर्द हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है ना तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। अबू दाऊद की रिवायत है ये। अब आप देखिए कि आप जब ये काम करने चलें आपको क्या चाहिए? अल्लाह की रहमत की जरूरत है, तो अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाती। अच्छा देखो, मैं सोच रही थी सुबहान अल्लाह मेरा रब इतना करीम है, उसने देखो बंदे को जब एक जिम्मेदारी दी है ना, इतनी भारी जिम्मेदारी डाली, तो अल्लाह ताला वॉच कर रहा है एक एक उसके काम को, एक एक उसके स्टेप को, उसको पता है इस रास्ते में मुश्किलें आएंगी, तो उसने साथ बता दी ये लो ये 2 टूल्स मैं तुम्हें देता हूं, तुम इनके साथ काम लेना इस रास्ते में, ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, अच्छा जाओ जाके ये काम करो। नहीं, ये 2 चीजें, जैसे मिसाल के तौर पे आपको किसी मुहिम पे भेजा जा रहा है ना, किसी मिशन पे, तो आपको कोई चीजें साथ दी जाती हैं, भाई ये आप छतरी रख लें और आप साथ ये कोई टॉर्च रख लें, ये 2 चीजें आपको काम आएंगी मसलन। तो अल्लाह ताला आपको ये 2 टूल्स दे रहे हैं, आप रास्ते में निकलोगे इस रास्ते में जो तकलीफें ना उनके लिए ये काम आएंगे। सुभान अल्लाह। फिर देखें जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात और दिन को ये फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है, फजर और असर में ये जमा होते हैं फरिश्ते, जो जो फरिश्ते रात को रहे थे वो आसमान पे चढ़ जाते हैं, तो जो दिन को रहने वाले हैं वो आ जाते हैं। तो जब वो जो रात के आपके साथ रहे थे वो फजर के वक्त ऊपर चढ़ जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं, हालांकि अल्लाह ताला को पता है, निकला अल्लाह ताला पूछते हैं तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा? तो कहते हैं हमने उसको इस हाल में पाया था कि नमाज पढ़ रहा था, और हम इसी हाल में उसको छोड़ के आए कि वो नमाज में था। रिपोर्टिंग होती है सारी। तो नमाज ऐसे ही नहीं है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए हमें क्या सिखाया कि हर तरह के स्ट्रेस में, चाहे वो कोई नेचुरल डिजास्टर हो, जैसे कोई सूरज चांद ग्रहण हो, या कहत पड़ गया है बारिश नहीं हो रही, या फिर और कोई ऐसी मुश्किल आ गई है, कोई तकलीफ है, कोई ऐसी है, आप उसके अंदर सूरज ग्रहण के लिए एक नमाज सिखाई, बारिश के लिए नमाज इस्तस्का सिखाई, फिर कोई परेशानी है आप हाजत के नफल पढ़ लें, फिर इसी तरह कोई कंफ्यूजन है, कोई आप कुछ समझ नहीं आ रही क्या फैसला करना है, तो उसके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज ही का तरीका सिखाया कि नमाज पढ़ के फिर ये दुआ मांग लेना। जैसे हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, कि जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तखारा करने का तरीका बताते थे, ऐसे बताते थे इस्तखारे की दुआ ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान की कोई सूरत सिखाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब तुम में से कोई किसी काम का इरादा करे तो इस तरह इस्तखारा करे कि फर्ज नमाज के अलावा 2 रकतें अदा करे, फिर यूं कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका अस्तखीरुका, वो सारी फिर दुआ है। इंशाल्लाह ताला आपको मुझे ये दुआ भी सिखानी है, ठीक है, याद कराएंगे इंशाल्लाह हम आपको ये दुआ। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पे देखें फौरन क्या होता था, कोई मुश्किल है, अब यहां पे देखें मुश्किलें आई, किसी ने ताना दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने तकलीफ दी, किसी ने झूठे इल्जाम लगा दिए, तो क्या करना होगा? नमाज के लिए खड़े हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तेज हवा भी चलती थी ना, आंधी आती थी तो मस्जिद का रुख करते थे। तो फरमाया ये तुम्हें हेल्प करेगा। और याद रखना, अल्लाह ताला तो सब्र करने वालों के साथ है। नमाज के लिए भी तो सब्र ही चाहिए ना, नमाज भी तो नहीं आप पढ़ सकते सब्र के बगैर, सब्र ही नहीं होगा नमाज में खड़े कैसे होंगे। तो सब्र असल में यहां पे माना इस्तकामत का है, जम जाने का माना है इस जगह पे। वैसे तो मैंने आपको सब्र के बहुत माने बताए और बहुत तरह से के सब्र बताए, मगर यहां पे माना क्या है, जम जाना, बस इस काम से हटना नहीं है हमने, ठीक है। बस ये जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाल दी है ना हमारे ऊपर, अब हमने इस जिम्मेदारी को निभाना है कि पूरी नौ इंसानी के ऊपर ये हुज्जत कायम कर देनी कि कल को वो ये ना कह सके अल्लाह हमें नहीं किसी ने बताया था, हमें क्या पता था, हम तो मुसलमानों को देख के वो हमें तो ऐसे लगता था ये हमारे जैसे ही हैं, उन्होंने तो कभी ना अपने अमल से हमें कोई ऐसी चीज बताई, हमें तो कभी डिफरेंट ही नहीं लगे, ना इन्होंने हमें कभी कुछ कहा कोई, ना अपने कॉल से अपने दीन की नुमाइंदगी की है ना। कहीं ये ना हो उस दिन कहें कि या अल्लाह ये तो तेरे दीन के बड़े ठेकेदार बने फिरते थे, ये तो सबसे बड़ी रुकावट थे हमारे लिए तेरे दीन की तरफ आने, इनको देख के तो हम तेरे दीन से दूर हो गए, ना कि इनको देख के हम तेरे दीन की तरफ आते। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, जाहिर है पहले दीन को अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए भी सब्र ही चाहिए ना, फिर दूसरों तक पहुंचाना है तो उसके लिए भी सब्र चाहिए। ये नहीं है कि मैं खुद तो कुछ करूं नहीं, खुद मुझे ना दीन का पता है ना कोई, मैं उसकी कोई चीज को फॉलो करती हूं, मैं दूसरों को बताने चल पड़ूं तुम मुसलमान हो जाओ और तुम ये करो, कहेगा पहले तुम तो मुसलमान बनो खुद। तो इसके लिए भी तो सब्र चाहिए ना। तो दीन की जो नुमाइंदगी है वो सिर्फ इस तरह से नहीं होगी, ये उम्मत वसत की जिम्मेदारी ऐसे नहीं पूरी होगी कि हम बस गली गली फिर रहे हैं और बता रहे हैं उनको, भाई जब तक हम खुद अपने ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे। तो ये कॉल से भी होगी, अमल से भी होगी नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये अपने आप अमल से भी देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि ये होता है दीन, ये है इस्लाम, ये देखो जैसी मैं हूं, समझ आई, मुझे देख के कोई कह सकता है ये होता है इस्लाम, ऐसी सच्चाई, ऐसी दयानतदारी, ऐसा उठना बैठना, ऐसी नेकी, ऐसी खैरख्वाही, सिंसेरिटी दूसरों के लिए, ऐसी रहम दिली, ऐसा ओढ़ना बिछोना, ऐसा खाना पीना, ऐसी शराफत, ऐसी नेक नियति, क्या कोई ये सारी नुमाइंदी रिप्रेजेंटेशन है ना, क्या मेरे अमल से रिप्रेजेंट हो रहा है ऐसे। जब ये रिप्रेजेंट होगा उसके बाद आप मुंह से ये बात भी निकालेंगे तो वो एक बात दिल को भी लगेगी। और अगर अमल मेरा खराब, झूठ मैं बोलूं, बदनीयत मैं, फ्रॉड मैं कर रही हूं, धोखेबाजी मैं कर रही हूं, कारोबार में बेईमानियां मैं कर रही हूं, वह दूसरों कह रही हैं आओ इस्लाम की तरफ बड़ा अच्छा दीन है, वो क्या कहेगा, हंसेगा फिर। तो यही लोग ना फिर क्यामत के दिन खड़े होंगे कि या अल्लाह इनको देख के हम इस्लाम लाते, तेरे दीन की तरफ आते, ये तो खुद इतने खराब थे, इनको देख के हमने क्या आना था, हम तो इनकी वजह से और दूर हो गए। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है ना, ये कितनी सीरियस बात है। तो ये एक पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज है, हमारी अपनी जिंदगी से स्टार्ट होता है और फिर दूसरों तक जाता है। क्या मैं कहूं कि ये देखें ये एक प्रोडक्ट है मेरे पास, ये आप खरीदें, अब दूसरा कहेगा कि ये प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करके देखा पहले ये सही भी है कि नहीं, अगर ये इतना ही अच्छा तो सबसे पहले तो आपको खुद यूज करना चाहिए था ना। तो हम जिस प्रोडक्ट की सेल के लिए निकल रहे हैं ना, पहले तो हम अपने पास तो हमने उसको अप्लाई किया हो, फिर हमें देखे वो कहें कि वाकई ये देखो जो मेकअप और ये वो अपने सेल करते हैं ना, वो कैसे दिखाती हैं कि देखे हमने ये इस्तेमाल किया तो हमें ये हुआ, फिर लोग देख के इतने मुतासर होते हैं, कहते हैं हाँ ये वाकई भाई इसके ऊपर बड़ा फर्क पड़ा। और कोई अगर कहे कि मैं खुद तो नहीं इस्तेमाल करती लेकिन आप जरूर कीजिए, तो ये समझने की बातें, ये बहुत इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है, खैर अब हम आगे हम चलेंगे क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि क्या इसका मकसद है। अच्छा देखें अब, सुभान अल्लाह, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात। अच्छा भाई, जब तुम ये काम करने चलोगे, बड़ा जिम्मेदारी का काम है, इसमें हो सकता है कि कोई ऐसा भी वक्त आ जाए कि इंसान को अपनी जान की बाजी लगा देनी पड़े, जान हार देनी पड़े। ऐसा भी वक्त आ सकता है ना, जान खतरे में पड़ जाए, तो जान भी जाने लगे, जान चली भी जाए, ये काम नहीं छोड़ना। अगर जान चली भी गई ना, तो तुम मुर्दा फिर भी नहीं हो, बल अहयाउन, बल्कि जिंदा है। वलाकिल्ला तशुरून, तुम्हें नहीं समझ आती ये बात। जो अल्लाह के रास्ते में उसका ये काम करते हुए जिसको जान से हाथ धो बैठने पड़े, शहादत हो उसकी, तो उसको मुर्दा ना कहो। क्यों मुर्दा क्यों नहीं कहा? क्या वो मरा नहीं है? मर तो गया है, लेकिन तुम उसको मुर्दा ना कहो। क्यों? इसलिए कि एक वर्ड है ना, मुर्दा, डेड, वो अपने लिए इंसान पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने इंसान की इस चीज की भी रियायत की। और फिर दूसरी बात ये है, देखें वैसे तो हर एक इंसान जब दुनिया से चला जाता है ना, तो दुनिया से जाना खात्मा नहीं है। क्या है मौत? क्या है? ये एक डोर है जिससे आप एंटर होके एक और जिंदगी में चले जाते हैं। ये डोर है, जब तक आप इस डोर से एंटर नहीं होंगे, दूसरी वर्ल्ड में, अनसीन वर्ल्ड में नहीं जा सकते, ठीक है? तो ये मौत समझ ले दरवाजे की, अपने जहन में लेकर आए तस्वीर। अब जो दूसरी वर्ल्ड है ना, उसमें एक और जिंदगी है, और वो सबकी है, काफरों की भी है, उसको जिसको कहते हैं बरजखी जिंदगी, काफरों की भी है, मुसलमानों की भी है। उनको वहां पे अजाब हो रहा है, उनको, किसी को वहां पे कोई जन्नत का बाग बन जाती, किसी की कब्र, किसी के जहन्नुम का गड़ा बन जाती, तो हदीस है ना। लेकिन पास की जिंदगी, वहां की जो बरजखी जिंदगी है ना, वो बहुत हाई लेवल की है। बरजखी जिंदगी में भी लेवल्स हैं, वो उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया बल अहिया उन, कैसे वो जिंदा हैं। अच्छा सुभान अल्लाह, इसके बारे में जब किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा इसी आयत के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी रूहें जो है ना, सब्स ग्रीन कलर के बर्ड्स के पेट में होती हैं, और वो उनके लिए ऐसी कंदीलें हैं जो अर्श के नीचे लटकी हुई हैं। जो कंदीलें समझ लें, जैसे शैंडलियर्स होते हैं, ये नहीं लालटेने टाइप, वो जो कंदील सी एक बनाई होती है, शैंडलियर समझ लें चलें, जो अर्श के नीचे ना, अल्लाह ताला के अर्श के नीचे लटकी हुई है, सुभान अल्लाह। और ये जो रूहें हैं ना, ये आपको मैंने बताया वो बर्ड्स के पेट के अंदर है, इनकी रूहें जो ये शहीद है, और ये बर्ड्स जो हैं वो जन्नत में उड़ती फिरती रहती हैं, जहां चाहे चली जाए, फिर वो वापस आके ना इन कंदीलों में बैठ जाती हैं, सुभान अल्लाह। तो ये इसको क्या कहेंगे? जिंदगी कहेंगे ना। ये वाली जिंदगी नहीं है जो दुनिया में होती है, जैसे अब हम मैं खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग, वो वाली नहीं। मगर वो वाली बात है ना, वलाकिन ला तशुरून, तुम शऊर नहीं, इसको समझ ही नहीं सकते तुम। ये देखे ना, ये चीजें जो वो अनसीन वर्ल्ड की चीजें हैं ना, हमें बताई तो गई हैं, हम एक हद तक ही समझ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हम समझ सकते। जैसे जन्नत का कहा गया ना कि आप ना उसके बारे में, ना उसको देखा, ना सुना, ना कोई उसका इमेजिन भी नहीं कर सकता, तो हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है वहां की चीजें। तो अब हम समझना भी चाहें, हमें नहीं ये बातें समझ आएंगी, रूहें कैसे हैं, किस तरह से होता है, कैसे उनका कनेक्शन रूह और जिस्म का रहता है, किस तरह उठा के उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, क्या वो कब्र में उठ के बैठ जाते हैं मुर्दे, तो अगर हम अपने सामने देखे तो कोई नहीं बैठे होते, तो क्या इस तरह होता है? नहीं, हम समझ नहीं सकते, हम नहीं समझ सकते ये चीजों को। तो देखिए, मरना तो सबने ही है, मरने की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, कोई बीमारी से मर सकता है, कोई हादसे से मर सकता है, कोई कत्ल होके मर सकता है, कोई खुदकुशी करके मर सकता है, और कोई अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दे के जा सकता है। लेकिन ये जो अल्लाह के रास्ते में जान देना है ना, फी सबीलिल्लाह, इतना बड़ा रुतबा है, इतना बड़ा रुतबा है کہ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیک عمل لے کے دنیا سے جاتا ہے اس کو اللہ کے ہاں اتنی اچھی زندگی ملتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا. سمجھ آئی؟ جو بھی جس نے نیکیاں لے کے دنیا سے گیا ہے نا، وہاں بھی اتنی اچھی زندگی ملتی ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا میں دنیا میں واپس آؤں. سوچیں جو نیکیوں کا سامان نہ لے کے گیا ہو تو پھر وہی ہوگا نا جو چاہے گا کہ میں واپس چلا جاؤں. تو آپ اس سے نا، جن لوگوں کے کوئی فوت ہو گئے ہو نا اور وہ نیکیاں کر کے گئے دنیا سے، تو آپ یقین کر لیں اور خوش ہو جائیں اس بات سے کہ وہ وہاں بہت خوش ہیں اور کبھی لوٹنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے؟ تو حدیث میں آگے یہ ہے، مگر سوائے شہید کے، شہید ضرور تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں اللہ مجھے واپس بھیج دے، پھر میں اس لذت سے اور اس سرور سے اور اس نشے سے گزروں جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہوئے مجھے حاصل ہوا تھا. صرف اس کو تمنا ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، یہ وہ مزہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بار بار مجھے وہ مزہ آئے، بار بار میں اس سے گزروں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو قتل ہونے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو چونٹی یا مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے. ترمذی کی حدیث ہے. اور شہید کون ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جس کو بھی ہم کہہ دیں شہید، ہمارے ہاں تو ہر ایک کو شہید کہہ دیا جاتا ہے، چاہے کوئی پھانسی پہ لٹکے وہ بھی شہید ہے، چاہے کوئی کچھ ہو جائے وہ بھی شہید ہے. جو جس کا عقیدت مند ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے ہمارے تو یہ لیڈر شہید تھے. لیکن یہاں پہ کیا بتایا گیا، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا. جیسے ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص مال غنیمت کی خاطر لڑتا ہے، مال کی خاطر مجھے ملے مل جائے مال، ایک شخص ناموری کے لیے لڑتا ہے، مجھے جی میری اتنی شہرت ہوگی کہ اتنا بہادر تھا، ایک شخص اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے کہ میری بہادری کے قصے کہے جائیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے یاد کیا جائے گا، لوگ کسی وقت یاد کریں گے فلاں ایک آیا تھا جو لڑا تھا. ان میں اللہ کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑے وہ ہی اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. نہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے راستے میں لڑنے والا نہیں ہے. اب لڑائی بہت سے لوگ کر سکتے ہیں لیکن اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اسی طرح ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، اس کا کیا مطلب اجر ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. ایسے بندے کے لیے کیا اجر ہے؟ اس نے دنیا کو حاصل کرنے کی لڑائی کی. یہ صرف اور صرف اللہ کے راستے میں لڑنے والے کا یہ مقام ہے. اور پھر دیکھیں، اگر اللہ تعالی کے راستے میں کوئی لڑ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک آدمی تھا، وہ بڑا شدید زخمی ہو گیا جنگ میں، اور زخم کی شدت کی وجہ سے اس قدر تکلیف اس کو ہوئی کہ اس نے اپنے نیزے پہ خود کو الٹا گرا لیا، اس سے اس کی موت واقع ہو گئی. تو اس کی موت کو کہا گیا کہ یہ حرام موت مرا ہے. حالانکہ دیکھیں وہ اسلامی لشکر کا حصہ تھا، سارے ان کے نیک مقصد تھے، سب صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہا تھا. لیکن آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی بے صبری ہو گئی نا، اسی کو بے صبری کہتے ہیں نا، کہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی کہ جلدی مجھے تکلیف سے نجات مل جائے. تو یعنی ایک مقصد تھا، لڑائی کا ایک مقصد تھا، لیکن مرا تو اس سے نہیں، خودکشی کر کے مر گیا. تو اللہ کے راستے میں لڑنے کا مطلب یہ کہ کوئی اور ایسا مقصد نہ ہو جو اس کے علاوہ ہو، اپنی جان صرف اس کے لیے دے کہ اللہ کا دین بلند ہو. ایسے مثلا کوئی کسی اسلامی مملکت میں رہتا ہے لیکن، اور اس کی فوج میں ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری جاب ہے تو میں کیا کروں، مجھے تنخواہ ملتی ہے، تو یہ تو پھر تنخواہ کے لیے لڑنا ہے نا. ٹھیک ہے؟ تو ابھی اگر وہ مر بھی جاتا تو شہادت تو نہیں ہے. اگر اس کی نیت ہاں یہ کہ میں نے دین کا دفاع کرنا ہے، اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے، تو تب ہے شہادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ جو اس کے راستے میں زخمی ہوا وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کے زخموں کے خون زخموں سے خون بہ رہا ہوگا. اور خون تو خون کا رنگ تو جیسا ہوگا جیسے خون کا رنگ ہوتا ہے مگر اس میں سے خوشبو مشک کی آ رہی ہوگی جیسے پرفیوم کی خوشبو ہے. سوچیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی اس کو کتنے ہزاروں پتہ نہیں لاکھوں سال گزر گئے ہوں گے مگر اس دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کھڑا کریں گے کہ لوگوں کو پتا چلے یہ دیکھو قربانی کی زندہ مثال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات کو دو آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے اور مجھے ایک درخت پہ لے کے چڑھ گئے پھر ایک مکان میں لے کے گئے جو اتنا خوبصورت تھا اتنا پاکیزہ تھا میں نے اس سے زیادہ خوبصورت مکان کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھی کس کا مکان ہے تو انہوں نے کہا یہ شہید کا گھر ہے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی خاطر مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں میری یہ خواہش ہے. اور دیکھیں مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے سوائے قرض کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو شہادت ملنا ہی گناہوں کی معافی کا ذریعہ. سبحان اللہ. تو اچھا جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی نا ابھی حدیث میں نے آپ کو بتائی اس میں اور بھی تھوڑے آگے میں ایڈیشن آپ کو بتانا چاہوں گی جو اس میں آگے اس حدیث میں ہے کہ جو روحیں سبز پرندوں کی پیٹ میں ہوتی ہیں شہداء کی اور وہ قندیلوں میں بیٹھتی ہیں تو اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان کا رب ان کی طرف توجہ کر کے فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کس چیز کی خواہش ہو سکتی ہے حالانکہ ہم جہاں جانا چاہتے ہیں جاتے ہیں جنت میں پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے دوبارہ پوچھتا ہے پھر دوبارہ پوچھتا ہے تین دفعہ ان سے یہ پوچھتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اب بغیر مانگے کسی طرح چھوڑا نہیں جا رہا تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں یہاں تک کہ ہم دوسری بار تیرے راستے میں مارے جائیں. جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے اب یعنی اب ان کو اور کوئی خواہش ہے ہی نہیں کوئی بھی نہیں تمنا ہے ہی نہیں بس سوائے اس کے. اور جابر فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں نا جب حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام جو جابر کے باپ تھے وہ مارے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر میں تجھے بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ سے فرمایا. تو میں نے عرض کیا آپ بیان کیجئے یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی بات کی ہے نا پردے کے پیچھے سے کی ہے مگر تیرے باپ کو سامنے کھڑے کر کے بغیر حجاب کے بات کی ہے اور فرمایا ہے اے میرے بندے خواہش کر کہ میں تجھے دوں. تیرے باپ نے کہا اے میرے مالک مجھے پھر سے زندگی دے تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ مارا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ کوئی دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا. تب تیرے باپ نے کہا اچھا اے میرے مالک جو لوگ دنیا میں رہ گئے ہیں ان کا میرا حال پہنچا دے. پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے. سبحان اللہ. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کے راستے میں مردہ نہ سمجھنا ان کو بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور رزق پا رہے ہیں. اور اتنی پیاری بات ہے اس کے بعد فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ اور وہ خوش ہیں اس پہ جو اللہ نے ان کو فضل دیا. ویستبشرون یہ دیکھیں اس بات کو سنیں سبحان اللہ وہ پتہ کس بات پہ خوش ہیں بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم وہ جو ابھی ان سے نہیں ملے جو ان کے پیچھے ہیں دنیا میں رہ گئے نا ان کے لیے وہ بہت خوش ہو رہے ہیں. کس بات سے خوش ہو رہے ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ابھی دنیا میں رہ گئے ہیں وہ بھی ہمارے راستے پہ چلیں گے نا ان کو بھی کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو بھی کوئی غم نہیں ہوگا وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے خوشیاں منائیں گے. یستبشرون بنعمت اللہ وفضل और वो खुशियां मना रहे हैं उस पे जो अल्लाह ने उनको नेमतें दी हैं और जो फजल दी है, और अल्लाह मोमिनों का अजर जाया नहीं करता। सुभान अल्लाह, पता है वो वहां पे बैठे हुए खुश हो रहे हैं उनके लिए जो दुनिया में रह गए, और उनके लिए किस बात पे खुश हो रहे हैं कि उनको जैसे हमें नहीं ना कोई खौफ, जैसे हमें कोई गम नहीं है, इसी तरह उनको भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी बात मुझे लगी ना कि देखो वहां पे भी खुश हो रहे हैं इनके लिए जो दुनिया में, जो उन उनसे मिलने वाले हैं बाद में। तो सुभान अल्लाह, इससे पता चलता है कि शुहदा की वहां पे ख्वाहिश ही होती है कि उनके अच्छे हाल का दुनिया में लोगों को पता चल जाए। तो उस वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बता देते थे, आज वही का सिलसिला तो बंद हो गया, लेकिन सच्चे ख्वाबों के जरिए लोगों के हालात पता चलते हैं। सोचे जिनको कुरान से फायदा मिलता है, हम दुनिया में तो नहीं शायद इतना जान सकते, लेकिन दुनिया से जो जो चले जाते हैं, मसलन एक हमारी स्टूडेंट, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो हमारे साथ उन्होंने कुरान का सफ़र पूरा किया एक दफ़ा और फिर दूसरी दफ़ा माशाल्लाह कर रही थी। तो उनको उनकी बेटी को वो ख्वाब में आई और उन्होंने कहा, उनकी बेटी मुझे बता रही थी कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक बिस्तर पे वो बैठी हुई है और उसके पीछे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और नूर ही नूर है जो फैला हुआ है, इतना नूर है उनके बिस्तर के इर्द गिर्द और पीछे पूरा कुरान है लिखा हुआ, आयतें लिखी हुई हैं, और वो उठ रही हैं और बैठ रही हैं और लेट रही हैं, और हर दफा जो उनकी उस्ताद हैं वो उनके लिए दुआएं कर रही हैं, या अल्लाह उनको उस तरह फायदा देना जैसे उन्होंने मुझे ये फायदा दिया। क्या जाहिर है, उन्होंने जिनसे उन्होंने कुरान सीखा था, उन्होंने उनको क्या फायदा पहुंचाया, कुरान ही सिखाया था ना, तो यानी उस कुरान का उनको वहां फायदा मिल रहा है तो वो वहां पे दुआएं कर रही हैं। अल्लाह ताला ने देखो दिखाया, तो अल्लाह ताला दिखाता है। तो शहादत का रुतबा तो खैर बहुत ही अजीम है, बहुत ही अजीम है। तो देखें सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना, बल अहयाउन, तो वो जिंदा है। उनके पता है, उनके सुभान अल्लाह जिस्म भी ऐसे होते हैं कि उनके जिस्म भी मट्टी में, यानी उस तरह से नहीं होते कि जैसे दूसरों के डीकम्पोज हो जाते हैं ना जिस्म, उस तरह से इनके नहीं होते। मिसाल के तौर पे हजरत, बहुत सारी मिसालें हैं लेकिन आपको एक दो मिसालें मैं बताती हूँ कि हजरत अमर बिन जमूह जो है और हजरत अब्दुल्ला बिन अमर अंसारी जो थे, इनकी कब्रों को सैलाब ने उखाड़ दिया था। तो ये दोनों एक ही कब्र में दफन किए हुए थे, उहद के शहीद हुए थे ये उहद में, तो इनकी कब्र खोदी हुई ताकि जगह चेंज कर दी जाए। तो जब इनके जिस्मों को कब्र से निकाला गया तो जिनके जिस्मों में जरा सा भी कोई चेंज नहीं था, यूं लगता था जैसे वो कल फौत हुए, और उनमें से एक जख्मी थे और उनका हाथ उस जख्म पे था, उनको उसी तरह दफन किया गया था। तो उनके हाथ को जख्म से हटा के छोड़ा गया तो वो फिर अपने जख्म पे आ गया। और ये जंगे हुद और कब्र खोदने के दरमियान 46 साल का अरसा था, 46 साल का। सुभान अल्लाह, 46 ईयर्स गुजर चुके हैं, सोचें। और उससे भी ज्यादा, खैर ये तो 46 ईयर्स, 1935 की मैं आपको बात बताती हूँ। शाह फैसल जो अव्वल थे, उनको ख्वाब में दिखाया गया कि दो सहाबा कराम की कब्रें दरिया के किनारे वाके हैं, उनमें पानी आ रहा है। तो सहाबा कराम को ना उससे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो 3 दिन उनको लगातार ख्वाब में ये आया। तो फिर उन्होंने उलमा से मशवरा किया, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इनको मतलब कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। तो हज के जमाने में कब्रें खोल के उनकी जगह उन्होंने सोचा कि अब हम बदल देंगे। और हज में आप सोचें कि जाहिर है वो उस वक्त के जमाने के अंदर बहुत लोग जाहिर है वहां पे जमा हो गए, जब कब्रें खोली गई तो वाकई जैसे कुरान में है कि बल आहियान, उनके जिस्म भी इस तरह थे तरोताजा, और हजारों लोगों ने देखा रेडियो पे, अखबारों में ये खबरें आई बाकायदा, और अल्लाह ताला ने लोगों को दिखाने के लिए ही देखे ये सुभान अल्लाह सारा किया। तो इसी तरह शुहदा के जो जिस्म होते हैं ना, महफूज रहते हैं। एक और वाकया है कि जब ये अफगानिस्तान में वॉर हो रही थी तो एक जगह गोला फटने से ना बहुत बड़ा घड़ा पड़ गया, वहां पे एक टांग दबी हुई दिखाई दी जिससे खून बह रहा था। तो उन्होंने तजस्सुस में जमीन खोदी वहां पे, तो वहां पे 11 मैयतें थीं दफन हुई और सब ऐसी फ्रेश थीं जैसे कि अभी दफन की है। और दरख्त की जड़ से कोई चीज सी जिससे रस टपक के उनके मुंह पे गिर रहा था। तो बड़े बूढ़ों से पता चला कि 1904 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए ये शहीद हुए थे। तो सुभान अल्लाह, अब ये कितना अरसा गुजर गया और फिर उनके जिस्म महफूज थे। हालांकि कोई चीज उनके पुराने जमाने में तो या अभी भी बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या लगाया जाता है, किस किस तरह लोग कोशिशें करते हैं कि हम हमारी बॉडी डिकम्पोज ना हो, हम ये ऐसे ही रहें, हम बिल्कुल सही रहें, लेकिन फिर भी गल सड़ जाती है। और ये देखें तो उनकी रूहें जो हैं सुभान अल्लाह, वैसे आपको पता है ना कि तमाम रूहें जो हैं अगर वो नेक हैं तो वो इलियीन में, और अगर वो बद रूहें तो वो कहां है, सिजीन में। कोई रूहें ये जो कहते हैं रूहें भटकती फिर रही हैं दुनिया के अंदर, ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई हदीस से नहीं साबित है। ना ये है कि भाई जुमे रातों को वो घरों के चक्कर लगा रही हैं तो उनका यही काम है कि वो यहां पे घूमती फिरती रहे फिर हां, यहां कहते हैं 3 दिन बाद वो घर आती हैं, हमने तो खुशबू हमें पता चली, इतनी खुशबू आ रही थी बस वो रूह आई भी यहां पर इस वक्त घूम रही है, तो वो तो फिर यहीं पर फिरती रहती है रूह। भाई हमें कुरान और हदीस से क्या पता चलता है, या इलीजीन में जो आला मकाम है या सिजीन में, सिजीन कोई बिल्कुल ही नीचे कोई जगह है जहां पे जेल में उनको बंद कर दिया जाता है, और या फिर शुहदा की रूहें हैं जो जन्नत में होंगी, उनके लिए इलीजीन नहीं, उनके लिए तो जन्नत के बागात हैं। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। अच्छा अब ये सारी बातें तो चलो हमने सुनी और बड़े अच्छा लगा आपको, हमारा दिल चाहता है अल्लाह हमें भी ऐसी मौत नसीब हो, क्या ख्याल है आपका? तो फिर अब हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा रास्ता है? यकीनन आपके जहन में यह बात आ रही होगी, अल्लाह कोई ऐसा रास्ता है मुझे भी यह मकाम मिल जाए। हाँ बिल्कुल है। नंबर 1 ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये दुआ करता है ना अल्लाह मुझे शहादत नसीब करना, दिल से जिसकी ये दुआ होती है, तो चाहे उसको बिस्तर पे मौत आए लेकिन उसको शहीद का मकाम मिलता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरे नंबर 2, देखिए मैंने आपको शुरू में ये बताया, क्या बताया कि ये जिम्मेदारी अदा करते हुए कोई अगर जान भी उसकी चली जाती है तो अल्लाह के रास्ते में है ना, क्योंकि अल्लाह के काम को करते हुए उसकी जान चली गई। आपको जब मैंने ये कोर्स शुरू हुआ था तो एक लेक्चर में ये बताया था शुरू में, अगर आपको याद हो, कि आपने क्या नियत करनी है ये पढ़ने से पहले, आपने क्या नियत आपकी होनी चाहिए, थोड़ा अगर आपके जहन में हो। हमने इस दीन को सिर्फ अपने तक नहीं रखना, इसको आगे पहुंचाना, यही उम्मत वसत की जिम्मेदारी है ना। अब पैगाम पहुंचाने के लिए क्या जरूरत है, पहले हम इस पैगाम को खुद सीखेंगे तो फिर ही आगे पहुंचाएंगे ना। इस नियत से हम सीखना शुरू करें, इस नियत से हम मेहनत करें, इस नियत से हम वक्त लगाएं। मैंने खुद इसको लेना है, और अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे फिर दूसरों तक लेके जाएंगे, सारा एक ही पैकेज है, मगर वो स्टार्ट कहां से होता है, पहले अपने ऊपर से स्टार्ट होता है ना। अदरवाइज तो अल्लाह ताला माफ करे, किसी के साथ ये हादसा मैं कहूंगी कि ये हुआ भी था कि वो उसने, अल्लाह ताला बस माफ करे, हमारे ईमान को अल्लाह ताला महफूज रखे, उस लड़के ने ये किया कि उसने कहा मुनाजरा मैं करता हूँ इस क्रिश्चियन के साथ ना, बड़ा अच्छा बच्चा था मुसलमान बच्चा, तो वो उस मुनाजरे के लिए खड़ा हो गया और उल्टा क्या हुआ, वो क्रिश्चियन जीत गया और ये उल्टा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, ये लड़का जो था ये कन्वर्ट हो गया और क्रिश्चियन बन गया। जाहिर है जब अपना ही इल्म पुख्ता नहीं है तो दूसरे के पास जाएंगे, वो आपके मुंह पे कोई और बात दे मारेगा, अगर उसको अपना नॉलेज हुआ तो वो खुद कोई बात ऐसा कह देगा तो इंसान तो डाउटफुल हो जाता है ना। तो इस नियत के साथ दीन को सीखना है, इस कुरान को पढ़ना है, मेहनत करनी है कि मैं अब इसको लेके आगे जाऊंगी और फैलाऊंगी। फिर ये बात है कि अगर इस नियत के साथ आप इसको पढ़ते हैं तो जाहिर है ये जो उम्मत वसत की जिम्मेदारी है इसमें आप अभी किस स्टेज पे हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं। आप अगर बिस्तर पे भी मौत आ गई ना, तो वो शहादत की मौत है। किस तरह से? क्योंकि आप इस रास्ते में है ना, अभी आपने पहुंचाना नहीं शुरू किया, अभी आपने खुद ही सीखना शुरू किया, अभी फर्स्ट स्टेप पे है, लेकिन ये सफर तो शुरू कर दिया, नियत तो है ना। तो इस जिम्मेदारी को पूरा करने के रास्ते में भी जो मर गया वो भी शहीद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालिब इल्म जो होता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है, जब तक वो इल्म के लिए निकलता है तो वो अल्लाह के रास्ते में। तो अल्लाह के रास्ते में यानी जब आप इल्म को तलब कर रहे हैं, जब आप इल्म ले रहे हैं, तो आप अल्लाह के रास्ते में, और अल्लाह के रास्ते में अगर कोई मर भी गया तो शहीद है। तो ये इल्म लेना अगर आज तक नियत नहीं की ना, अब कर लें, या अल्लाह मैं इसको लेकर औरों तक ये पैगाम पहुंचाऊंगी। और आजकल तो अपने मुसलमानों तक पहुंचाना भी इतना जरूरी हो गया है, इसलिए अल्लाह माफ करे कि जो अपना नाम फातिमा और अहमद और मोहम्मद रखे हुए ना, वो भी उतना ही जानते हैं जितना कि कोई गैर मुस्लिम जानता है दीन को। जितने गैर मुस्लिम कंफ्यूज हैं इस्लाम के बारे में, उतने ही हमारे मुसलमान भी कंफ्यूज हैं। जितने गैर मुस्लिमों को डाउट्स हैं इस दीन के बारे में, उतने हमारे मुसलमानों को भी डाउट्स हैं। तो अपनों में भी काम करना है, गैर मुस्लिमों में भी काम करना है, अपनी इर्द गिर्द वालों में भी काम करना है। लेकिन शुरू कहां से करेंगे, पहला स्टेप कहां पे होगा? पहले खुद जानना है, पहले खुद सीखना है, पहले खुद लेना है। तो ये है इस जिम्मेदारी को, उम्मत वसत की जो जिम्मेदारी है इसको अदा करने के लिए फर्स्ट स्टेप। जैसे आप किसी एम्प्लॉय को फील्ड में भेजने से पहले ट्रेनिंग देते हैं ना, उसके बाद फील्ड में भेजते हैं। कोई भी आप जॉब स्टार्ट करें, आपको पहले ट्रेन किया जाता है ना, तो ये वो ट्रेनिंग है। जब ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तो आप जॉब पे ही समझे जाते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है। तो यही हमारा भी है, हम पहले खुद ले रहे हैं ट्रेनिंग ताकि कल को हम देने वाले बने। और जब तक इंसान खुद ये पैगाम नहीं सीखता, नहीं समझता, यकीन करें उस वक्त तक तड़प भी नहीं लगती। अगर मैं कहूंगी नहीं मैंने खुद तो जाना नहीं है, बस मैं लोगों को बताने जा रही हूं, वो तड़प होगी नहीं। दूसरे इंसानों के लिए तड़प तभी आती है, बेचैनी तभी आती है, जब आप खुद ये पैगाम ले लेते हैं कि अल्लाह अब ये दूसरे लोग भी इधर आ जाएं, मैं उसको भी खींच लाऊं, उसको भी बुला लूं। अब ये जो आपकी क्लास में एडमिन्स हैं या ग्रुप लीडर्स हैं, आपको लगता है हाय हमें बार बार क्यों कॉल करते हैं, हमें क्यों बुलाते हैं, भाई उनको कोई तनख्वाह मिलती है इसकी? उनको कोई पे नहीं मिल रही, उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे, उनकी ये कोई जॉब नहीं है, क्या मिलता है उनको? बस ये वो बेचैनी है जो इंसान को लग जाती है। अल्लाह अब ये सारे इधर को आ जाएं। यही वो बेचैनी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन नहीं लेने देती थी, जिसने तड़पा दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह की मखलूक किस तरफ जा रही है। हालांकि देखिए आपने पढ़ चुके हैं ये बात को कि ऐ नबी आपसे इन जहन्नुम वालों का सवाल नहीं किया जाएगा कि क्यों जहन्नुम में ये चले गए, आपका काम पहुंचा देना। लेकिन कैसी तड़प थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब इंसान खुद जान जाता है ना, तो उसको ऐसी तड़प लग जाती है, लोग इरिटेट होने लगते हैं कि क्या मुसीबत है हमारे पीछे पड़ गई है। उनको लगता है कि पता नहीं इसको हमसे कोई मतलब है जो है, ये हमारे इतने पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं क्या इनको चाहिए हमसे। कुछ चाहिए भी नहीं होता, सिर्फ ये चीज है जो इंसान से काम करवाती है। इसीलिए फिर ऐसा शख्स ना फी सबीलिल्लाह शुमार होता है, जो भी लोगों को बुलाए, जो भी खुद भी सीख रहा है ये इस नियत के साथ कि मैंने लोगों को इस तरह बुलाना है। तो इसके लिए जरूरी नहीं, अगर आप पढ़ा नहीं सकते, हर कोई कहता है मैं नहीं पढ़ा सकती, जरूरी नहीं अगर आप के पढ़ाने ही बैठ जाए, अगर आप पढ़ा नहीं सकते तो कम से कम ऐसा कोई काम अगर हो रहा है तो उसमें आप वॉलंटियर कर लें, उसमें आप अपनी खिदमात दे दें, उसमें वक्त लगा लें, उसको आगे बढ़ाने में कोशिश करें। अपने घर में कैसेट क्लास कर सकती हैं और लोगों को बुलाएं और वहां पे कैसेट लगा के लोगों को सुना सकती हैं। अपना वक्त इस रास्ते में किसी ऐसी तरह से लगा सकती हैं कि आपका वक्त आपकी सलाहियतें इस तरफ को लगे। आप कुछ ना कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं, कोई ना कोई अपनी खिदमात दे सकती हैं। तो फिर अगर इस सफर में, इसमें चलते चलते मौत भी आ गई ना, तो फिर चाहे बिस्तर पे भी आएगी ना, फिर इन्हीं शहीदों में शुमार होंगे। तो जरूर इस चीज को शऊर के साथ, इस इल्म को लें, इस नियत को रिवाइव करते रहें, जहन से जाने ना दें, मैं क्यों इस तरफ आई हूं, मैं क्यों ये इल्म ले रही हूं, मेरा क्या मकसद है इससे। देखिए आज हर एक चीज की अवेयरनेस मौजूद है, मगर कोई इस बारे में बात नहीं करता कि इस उम्मत के वजूद का मकसद क्या है। कोई भी नहीं बात करता, ना आपको मीडिया में कोई ये बात मिलती है, ये जैसे खत्म हो चुका है ये बात, जैसे कि किसी को, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, आप लोगों का इंटरव्यू लेना जो उन्होंने कुरान नहीं अभी पढ़ा हुआ, उनसे जरा पूछिएगा कि एज उम्मत हमारा क्या मकसद है। उम्मत वसत तो चले उनको नहीं पता होगा, लेकिन मुस्लिम उम्मत का क्या मकसद क्या है दुनिया में आने का, जरा पूछिएगा कि थोड़ा आपको खुद अंदाजा हो, प्रैक्टिकली इसको करके देखें। ये मैं नहीं आपको कह रही कि मेरी बात पे आप करें, जरा देखें लोग क्या जवाब देते हैं। कहीं ये अवेयरनेस नहीं, ना स्कूलों में बताया जाता है, ना कॉलेजों में बताया जाता है, ना कहीं डिस्कशन इस पे की जाती है। आपकी फेसबुक है और सोशल मीडिया, कहीं पे भी कहीं ये अवेयरनेस है, बल्कि आपको भी शायद ये नई बात लग रही हो, क्योंकि अनोखी पता नहीं हमें क्या बातें बताने शुरू हो गई, इसलिए कि इसका आज तक कोई चर्चा ही नहीं हुआ, कोई नहीं ये बातें करता। भूल गए हम अपना मकसद, कि हमारा मकसद क्या दुनिया में, हम यही सोचते हमारा भी मकसद वही है जो बाकी सबका, बस खाओ पियो और जिंदगी गुजारो और दुनिया से चले जाओ, बस ऐसे जिंदगी के दिन काटने हैं, बस आना है दुनिया में, वो सारे काम जो लोग करते हैं, पढ़ाई की, जॉब की, बच्चे पैदा किए, शादियां हो गई, बच्चे पैदा किए, बस मर गए, दैट्स इट। और क्या मकसद है हमारा, हमें तो नहीं पता। नहीं 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 बात लग रही आपको कि अच्छा ये भी कुछ करने की बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें इन आयात का हक अदा करने वाला बना दे, जो हमारे पर जिम्मेदारी है अल्लाह हमसे पूरी करवा दे। यहाँ तक इंशाल्लाह तिलावत सुने, फिर आगे चलते हैं।
या अय्युहल्लजीन आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون